एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई के मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक शख्सियत पर बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही अक्सर तलवारें, घोड़े और कह सकते हैं बर्बरता की तस्वीरें ही दिमाग में आती हैं।
हाँ बिल्कुल, चंगेज खान। लेकिन आज हम उनकी कहानी को एक बिल्कुल अलग, शायद चौंकाने वाले नजरिए से देखने वाले हैं।
हाँ, क्योंकि हमारे हाथ लगे हैं जैक वेदरफोर्ड की एक बहुत ही चर्चित किताब चंगेज खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के कुछ विस्तृत सारांश, और इसमें कुछ गुजराती शीर्षक वाले अंश भी हैं।
जी, और ये हमें इस शख्सियत की कह सकते हैं एक नई परत खोलने में मदद करेंगे।
और ये कहानी आज जानना क्यों जरूरी है? इसलिए क्योंकि ये किताब इतिहास की एक बहुत पुरानी, जो पत्थर की लकीर जैसी लगने वाली धारणा है ना,
हाँ हाँ,
उसको सीधे सीधे चुनौती देती है। ये कहती है कि चंगेज खान सिर्फ एक लुटेरे या हमलावर नहीं थे,
बल्कि
वो एक दूरदर्शी नेता थे, एक समाज सुधारक, और शायद अनजाने में ही सही पर आधुनिक दुनिया की नींव रखने वालों में से एक थे।
हाँ, सोचिए जरा, ये किताब ये दावा करती है कि मंगोल साम्राज्य ने दुनिया को पहली बार मुक्त व्यापार, तेज रफ्तार संचार और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों जैसे विचार दिए।
ये तो बड़ी बात है।
बिल्कुल, वेदरफोर्ड का तो तर्क ये है कि इन चीजों ने यूरोप के पुनर्जागरण यानी रेनेसा को सीधे तौर पर हवा दी। ये इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है।
जो चंगेज खान की पारंपरिक छवि को एकदम उलट पुलट कर देता है।
सही का।
तो भाई, इस क्रांतिकारी सोच के पीछे हैं कौन? लेखक हैं जैक वेदरफोर्ड, और मजे की बात यह है कि वो कोई पारंपरिक सैन्य इतिहासकार नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, जो आमतौर पर सिर्फ लड़ाइयों और कौन जीता कौन हारा इस पर लिखते हैं।
हाँ,
ये एक जाने माने सांस्कृतिक मानव वैज्ञानिक हैं, मतलब कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मैकलिस्टर कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे हैं।
अच्छा।
और उनकी खासियत है आदिवासी समाजों को समझना और ये देखना कि भाई अलग अलग संस्कृतियां जब मिलती हैं, टकराती हैं, तो क्या होता है।
तो ये नजरिया उन्हें मंगोलों को सिर्फ एक फौजी मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जटिल समाज के रूप में देखने में मदद करता है।
जी,
जिनके अपने मूल्य थे, दुनिया को देखने का अपना तरीका था।
और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है ना?
बिल्कुल नहीं।
उन्होंने सालों तक मंगोलिया, साइबेरिया, मध्य एशिया की यात्राएं की हैं। वो उन जगहों पर गए जहाँ ये सब हुआ था।
वाह।
वहाँ के लोगों, उनकी संस्कृति को बहुत करीब से देखा, समझा।
और सबसे अहम बात जो आपने बताई थी पहले,
हाँ, कि उन्होंने शास्त्रीय मंगोलियाई लिपि सीखी।
ये क्यों खास है?
ये इसलिए खास है क्योंकि इससे उन्हें मंगोलों के अपने नजरिए से लिखे गए इतिहास, मतलब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स, को सीधे पढ़ने और समझने का मौका मिला।
अच्छा, वरना हमें तो वही इतिहास मिलता है जो हारे हुए लोगों ने लिखा या जीतने वालों के दुश्मनों ने लिखा।
बिल्कुल, ये वो कहानी है जो अक्सर उन सभ्यताओं के लिखे इतिहास में दब जाती है जिन्हें मंगोलों ने जीता था। उनका अपना पक्ष भी तो था।
उनका पिछला काम भी, जैसे इंडियन गिवर्स, वो भी यही दिखाता है कि उनकी दिलचस्पी हमेशा से उन संस्कृतियों के योगदान को सामने लाने में रही है जिन्हें यूरोप केंद्रित इतिहास अक्सर नजरअंदाज कर देता है।
हाँ, ये सब मिलकर उन्हें चंगेज खान का एक अनूठा और शायद ज्यादा सच्चा मूल्यांकन पेश करने की ताकत देता।
तो अगर इस किताब के दिल की बात करें, इसका निचोड़ क्या है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है?
देखिए, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि चंगेज खान की वो पुरानी छवि जो उन्हें सिर्फ एक वहशी, बर्बर, विनाशक दिखाती है, उसे तोड़ा जाए।
और उसकी जगह?
उसकी जगह ये किताब उन्हें एक असाधारण रणनीतिकार, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक और हाँ, जाने अनजाने में ही सही, आधुनिक दुनिया के आर्किटेक्ट के तौर पर पेश करती है।
ये किताब हमें एक सफर पर ले जाती है 12वीं सदी के मंगोलिया के वीरान कठोर मैदानों से लेकर,
हाँ, चीन के भव्य राज दरबारों तक,
रेशम मार्ग के चहल पहल वाले शहरों से गुजरते हुए
यूरोप के दरवाजों तक,
और ये दिखाती है कि कैसे एक आदमी और उसके लोगों के कामों ने महाद्वीपों और सदियों पर अपनी छाप छोड़ी,
जिसका असर शायद आज तक महसूस होता है।
बिल्कुल।
कहानी शुरू होती है तिमुजन, जो चंगेज खान का असली नाम था।
हाँ, तिमुजन।
उसके मुश्किल बचपन से, पिता की मौत हो जाती है, कबीला परिवार को छोड़ देता है, गुलामी झेलनी पड़ती है, लगातार जान बचाने का संघर्ष। वेदरफोर्ड का तर्क यह है कि नाइंसाफी और धोखे के यही कड़वे अनुभव थे जिन्होंने तिमुजन के अंदर वो क्रांति के बीज बोए।
जैसे किस तरह के बीज?
जैसे वफादारी को सबसे ऊपर रखना, लेकिन ये वफादारी खून के रिश्ते पर नहीं,
अच्छा,
बल्कि आपसी भरोसे और योग्यता पर आधारित हो। उन्होंने जन्म के आधार पर मिलने वाले अधिकारों की जगह काबिलियत को तरजीह दी।
ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए।
बिल्कुल, और उनकी सोच थी कि बिखरे हुए आपस में लड़ते मंगोल कबीलों को एक कानून के नीचे लाया जाए, एक साझा पहचान दी जाए।
फिर किताब बताती है कैसे वो ताकत में आए, कैसे उन्होंने मंगोल राष्ट्र को एक किया और फिर कैसे एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया।
हाँ, लेकिन जोर सिर्फ लड़ाइयों पर नहीं है, जोर है मंगोलों की कामयाबी के पीछे छिपे इनोवेशंस पर, मतलब उनकी नई सोच पर।
जैसे कि?
जैसे उनकी गजब की अनुशासित सेना, मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला और बाहर की टेक्नोलॉजी, जैसे शहरों को घेरने वाले चीनी इंजन वगैरह।
हाँ, घेराबंदी वाले इंजन।
उनको न सिर्फ अपनाना बल्कि उनको बेहतर बनाना, ये उनकी काबिलियत थी।
और शायद सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा बनाई गई एक नई विश्व व्यवस्था।
बिल्कुल, किताब का एक अच्छा खासा हिस्सा इसी साम्राज्य की विरासत पर है, जिसे पैक्स मंगोलिका यानी मंगोल शांति कहते हैं।
पैक्स मंगोलिका,
ये करीब 100 साल का दौर था जब मंगोलों के विशाल साम्राज्य में अमन, चैन और सुरक्षा थी। इसने रेशम मार्ग को फिर से जिंदा कर दिया।
व्यापार और विचारों का आदान प्रदान।
हाँ, ऐसा आदान प्रदान हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसने पूर्व और पश्चिम को सीधे तौर पर जोड़ दिया।
तो वेदरफोर्ड ये कहते हैं कि मंगोलों ने व्यापार को जो सुरक्षा दी, कागजी मुद्रा चलाई, डिप्लोमैट्स को जो इज्जत और सुरक्षा दी,
और चीन से प्रिंटिंग, कंपास, बारूद जैसी टेक्नोलॉजी को यूरोप तक पहुंचाया।
ये सब यूरोप के पुनर्जागरण, समुद्री खोजों के युग और आखिरकार आधुनिक दुनिया की सुबह के लिए एक तरह से चिंगारी बने।
हाँ, बिल्कुल यही तर्क है। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है ना?
हाँ, लगता तो है,
लेकिन किताब इसके पक्ष में काफी मजबूत दलीलें पेश करती है।
चलिए अब किताब के कुछ मुख्य हिस्सों या कह लें कि बड़े मोड़ों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, देखते हैं उनसे क्या पता चलता है।
हाँ, कहानी सुनाने के बजाय उनके पीछे के विचार देखते हैं।
शुरुआत तेमुजिन के मुश्किल हालातों से, पिता को जहर दिया गया, कबीले ने छोड़ दिया, ये जो धोखा था खासकर स्थापित अभिजात वर्ग से।
हाँ, जो खानदानी सरदार थे।
इसने तेमुजिन को सिखाया कि असली कीमत रिश्तेदारी की नहीं बल्कि काबिलियत और निजी वफादारी की है।
यहीं से उनकी वो योग्यता आधारित सोच की नींव पड़ी जिसकी बात हम कर रहे थे।
फिर उनकी पत्नी बोर्ते का अपहरण हुआ, ये भी एक बड़ा मोड़ था।
हाँ, और दिलचस्प यह है कि उन्होंने अकेले बदला लेने की बजाय समझदारी से दूसरों से मदद मांगी, रणनीतिक गठजोड़ बनाए, इससे उनकी साख बनी।
और यहीं पर उनका अपने बचपन के दोस्त जमुखा से टकराव भी शुरू होता है।
बिल्कुल, जमुखा पुरानी खानदानी व्यवस्था का प्रतीक था, वो मानता था कि लीडरशिप जन्म से मिलती है।
जबकि तेमुजिन
हर कबीले, हर तबके से काबिल लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे। ये सोच का फर्क था, परंपरा बनाम योग्यता।
आखिरकार 1206 में वो बड़ी सभा हुई, खुरिलताई।
हाँ, खुरिलताई, जहाँ उन्हें सारे कबीलों का सरदार चंगेज खान घोषित किया गया।
और वो फौरन बदलाव लाते हैं, सेना को डेसिमल सिस्टम में बांटा, मतलब 10, 100, 1000 के ग्रुप में।
इससे पुरानी कबीलाई वफादारियाँ टूट गईं, अब वफादारी सीधे खान के प्रति थी।
और सबसे अहम, उन्होंने यस्सा नाम का लिखित कानून लागू किया।
हाँ, यस्सा, ये कानून सब पर लागू होता था, खान से लेकर आम आदमी तक। ये एक तरह से रूल ऑफ लॉ की शुरुआत थी मंगोलों के लिए, इसने उन्हें एक राष्ट्र बनाया।
इसके बाद शुरू होता है विस्तार का दौर, उत्तरी चीन पर हमला।
हाँ, और यहाँ मंगोलों ने कुछ नया सीखा, वो घुड़सवार लड़ाई में तो माहिर थे पर शहर जीतना नहीं जानते थे, दीवारें तोड़ना नहीं जानते थे।
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने चीनी इंजीनियरों से घेराबंदी की तकनीक सीखी और उसे अपना लिया। न सिर्फ अपनाया बल्कि उसमें महारत हासिल कर ली। ये उनकी सीखने और बदलने की क्षमता दिखाता है।
फिर मध्य एशिया के ख्वारिज्मियन साम्राज्य पर हमला हुआ।
हाँ, और ये पहले से प्लान नहीं था, ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के सुल्तान ने मंगोल व्यापारियों और दूतों को मार दिया था।
अच्छा, तो ये एक तरह का बदला था।
हाँ, बदला भी था और मंगोल शक्ति का प्रदर्शन भी। ये हमला उनकी सैनिक रणनीति का एक बेहतरीन नमूना माना जाता है।
इसी दौर में मंगोलों ने वो याम सिस्टम भी बनाया था ना?
अरे हाँ, याम सिस्टम, कमाल की चीज थी वो। सोचिए, उस जमाने का सुपर फास्ट कुरियर और सप्लाई नेटवर्क।
कैसे काम करता था ये?
घोड़ों और सवारों के स्टेशनों का एक जाल था जो हजारों मील तक फैला था। हर कुछ दूरी पर ताजा घोड़े और सवार तैयार रहते थे।
तो इससे शाही फरमान और जरूरी सामान बहुत तेजी से पहुंचता होगा।
सिर्फ सामान ही नहीं, खबरें, जानकारी, यहाँ तक कि नई टेक्नोलॉजी भी साम्राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक बिजली की रफ्तार से फैलती थी। ये उनके विशाल साम्राज्य को कंट्रोल करने और जुड़े रखने का एक बहुत अहम टूल था।
चंगेज खान की मौत के बाद 1227 में उनके बेटे ओगेदेई ने इस विजन को आगे बढ़ाया।
हाँ, ओगेदेई ने स्थायी राजधानी कराकोरम बसाई और वो एक सिर्फ राजधानी नहीं थी बल्कि एक मल्टी कल्चरल हब बन गई।
और उसी के राज में मंगोल यूरोप तक पहुंच गए थे।
बिल्कुल, 1241 में पोलैंड और हंगरी की सेनाओं को बुरी तरह हराया, वो वियना के दरवाजे तक पहुंच गए थे।
तो फिर रुके क्यों?
वेदरफोर्ड का मानना है कि अगर ओगेदेई की अचानक मौत न होती तो शायद यूरोप का नक्शा आज कुछ और होता। ये दिखाता है कि साम्राज्य अंदरूनी चीजों से, जैसे उत्तराधिकार से, कितना जुड़ा हुआ था।
और फिर आती है इस साम्राज्य की सबसे स्थायी विरासत, पैक्स मंगोलिका, वो 100 साल की शांति और स्थिरता।
हाँ, और इसके फायदे गिनना मुश्किल है। सबसे बड़ा फायदा था सुरक्षित व्यापार।
रेशम मार्ग फिर से खुल गया और सुरक्षित हो गया।
मंगोलों ने रास्ते के छोटे मोटे टैक्स हटा दिए, उन्होंने व्यापारियों को खास सुरक्षा दी, यहाँ तक कि एक तरह का पासपोर्ट जारी किया जिसे पाइजा कहते थे।
पाइजा वो क्या था?
सोने या चांदी की एक गोली या तख्ती जिस पर खान की मोहर होती थी। इसे दिखाकर कोई व्यापारी भूमध्य सागर से चीन तक बेखौफ सफर कर सकता था।
कमाल है, इसने तो यूरेशिया को एक विशाल फ्री ट्रेड जोन जैसा बना दिया होगा।
बिल्कुल, और इसी सुरक्षित माहौल और याम सिस्टम की तेज रफ्तार की वजह से विचारों और टेक्नोलॉजी का जबरदस्त आदान प्रदान हुआ।
चीन में इस्तेमाल होने वाली प्रिंटिंग,
दिशा बताने वाला कंपास
और बारूद,
ये सब मंगोलों के रास्ते ही यूरोप पहुंचे और वहां बड़े बदलाव लाए। सोचिए जरा।
और उन्होंने अपने साम्राज्य में धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई, ये भी एक बड़ी बात थी।
बहुत बड़ी बात। उस जमाने में जब यूरोप में धर्म युद्ध हो रहे थे, मंगोल साम्राज्य में आधिकारिक तौर पर सभी धर्मों को इज्जत दी जाती थी।
उन्होंने जनगणना करवाई, कागजी मुद्रा का इस्तेमाल बढ़ाया, प्रशासन को व्यवस्थित किया।
हाँ, और काराकोरम में तो बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, कन्फ्यूशियस विद्वान एक साथ काम करते थे, बहस करते थे। एक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल सेंटर जैसा था वो।
तो इस पूरी कहानी से बड़े सबक क्या निकलते हैं, अगर हम सार निकालें तो?
पहला और सबसे जोरदार सबक तो यही है, बर्बर होने की छवि को चुनौती देना।
हाँ, कि मंगोल सिर्फ विनाशक नहीं थे,
वो बहुत टैक्टिकल थे, ऑर्गेनाइज्ड थे और शासन चलाने में काफी आगे की सोच रखते थे। हमें ये याद रखना चाहिए कि इतिहास अक्सर वो लिखते हैं जो हार जाते हैं, या जो शहरी सभ्यताएं होती हैं और उनका नजरिया हमेशा पूरा सच नहीं होता।
दूसरा बड़ा सबक, काबिलियत को खानदान से ऊपर रखना।
बिल्कुल, चंगेज खान ने लोगों को उनकी योग्यता और वफादारी के दम पर आगे बढ़ाया, न कि उनके जन्म या ऊंचे खानदान के आधार पर। उनके कई बेहतरीन सेनापति आम घरों से आए थे।
ये सिद्धांत आज भी कितना प्रासंगिक है ना, जब हम अपने समाज में भाई भतीजावाद या सिर्फ पहचान के आधार पर आगे बढ़ने की बातें देखते हैं।
सही कहा। तीसरा सबक, दुनियाओं को जोड़ने वाले पुल, यानी ग्लोबलाइजेशन के शुरुआती संकेत।
मंगोलों ने पहली बार यूरेशिया के इतने बड़े हिस्से को एक सिस्टम के तहत जोड़ा।
हाँ, रेशम मार्ग को सुरक्षित रखना उनकी मुख्य पॉलिसी थी। वो एक तरह से पुरानी दुनिया और आज की दुनिया के बीच एक अहम कड़ी है। आज की कनेक्टेड दुनिया में हम इसकी अहमियत बेहतर समझ सकते हैं।
और चौथा सबक,
राजकीय नीति के तौर पर धार्मिक और सांस्कृतिक सहनशीलता। एक ऐसे दौर में जब धर्म के नाम पर खून बह रहा था, मंगोलों ने आधिकारिक तौर पर सब धर्मों को बराबर माना।
ये सिर्फ दिखावा नहीं था, बल्कि इतने बड़े और अलग अलग धर्मों वाले साम्राज्य को चलाने का ये एक व्यावहारिक तरीका भी था।
बिल्कुल, भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए इसमें आज भी सीखने को बहुत कुछ है। क्यों?
हाँ, ये तो है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। किताब मंगोलों की हिंसा और क्रूरता को भी मानती है, लाखों लोग मारे गए, शहर के शहर तबाह हुए, तो क्या ये रचनात्मक विनाश वाली बात थोड़ी खतरनाक नहीं लगती? क्या ये हिंसा को जायज ठहराने जैसा नहीं है?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और किताब भी इस तनाव को स्वीकार करती है। वेदरफोर्ड का तर्क ये नहीं है कि हिंसा अच्छी थी या जायज थी।
तो फिर क्या है?
उनका तर्क ये है कि उस विनाश के बाद जो व्यवस्था बनी, वो पुरानी जड़ हो चुकी व्यवस्थाओं से ज्यादा गतिशील और ज्यादा जुड़ी हुई थी। ये इतिहास का एक जटिल और शायद असहज करने वाला सच है कि कई बार बड़े बदलाव बड़ी उथल पुथल के साथ आते हैं। हमें इसे समझना है, जरूरी नहीं कि हम इसे जायज ठहराएं।
ये एक नाजुक संतुलन है। अच्छा, किताब में कुछ विचार वाकई सोचने पे मजबूर करते हैं, जैसे आपने बताया था कि
हाँ, जैसे ये कि मंगोलों को उनके द्वारा जीती गई सभ्यताओं के चश्मे से देखने के बजाय हमें उन्हें उनकी अपनी दुनिया यानी मैदानों के नजरिए से समझना चाहिए। मतलब शहरी इतिहासकारों के लिखे कोई आखिरी सच न मान ले।
हाँ, उनका अपना एक लॉजिक था, अपनी जरूरतें थी।
बिल्कुल, और ये भी कि चंगेज खान ने सिर्फ दुनिया जीती नहीं, उसने एक नई दुनिया बनाई। मंगोल सेनाओं ने सभ्यताओं के बीच की दीवारें गिरा दी, पूर्व और पश्चिम के बीच सीधे संपर्क का पहला बड़ा दौर शुरू किया।
ये उनके दोहरे रोल को दिखाता है, विनाशक भी और निर्माता भी।
और वो दरबार वाली बात, जबकि यूरोप धर्म के नाम पर लड़ रहा था, महान खान के दरबार में ईसाई पादरी, मुस्लिम मंत्री और बौद्ध दार्शनिक एक साथ बैठकर बहस करते थे। मंगोलों के लिए धर्म निजी मामला था, सरकारी हुकुम नहीं।
ये उस वक्त के हिसाब से कितनी आधुनिक सोच है, कमाल है।
तो इन सब बातों से हम आज क्या सीख सकते हैं, अगर लीडरशिप की बात करें?
हाँ, क्या सबक हैं लीडर्स के लिए?
पहला तो यही, काबिलियत को पहचानें और मौका दें, सिर्फ जान पहचान या पृष्ठभूमि ना देखें। दूसरा, अपने लक्ष्य पर टिके रहें, पर नए तरीके सीखने को हमेशा तैयार रहें, जैसे मंगोलों ने घेराबंदी सीखी।
और तीसरा,
खुद आगे बढ़कर नेतृत्व करें, मुश्किलों में टीम का साथ दें, इससे वफादारी बनती है, जैसा चंगेज खान ने किया।
और निजी जिंदगी में आम इंसान के लिए क्या सबक है?
एक तो मुश्किल हालात से लड़कर निकलना। तेमुजिन की कहानी दिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी खराब हो, इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।
बिल्कुल।
और आलोचनात्मक सोच विकसित करना, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। हमेशा सोचना कि जो कहानी हमें सुनाई जा रही है वो किसने लिखी है, उसका क्या नजरिया हो सकता है। खासकर आज के सोशल मीडिया और फेक न्यूज के दौर में ये बहुत जरूरी है ना?
बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, वैश्विक स्तर पर देखे
तो दुनिया की आपसी जुड़ावों को समझना, कैसे एक जगह की घटना का असर हजारों मील दूर तक हो सकता है। मंगोलों के समय भी हुआ, आज भी होता है।
और ये भी कि ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के फायदे और नुकसान दोनों हैं।
हाँ, मंगोलों के रास्ते व्यापार और ज्ञान फैला तो बीमारियां जैसे प्लेग भी फैली। आज भी हम देखते हैं कि दुनिया का जुड़ना मौके लाता है, पर साथ में चुनौतियां भी लाता है। ये एक दोधारी तलवार है।
मेरे लिए इस पूरी बातचीत में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि आज की दुनिया की कई बुनियादी चीजें, जैसे फ्री ट्रेड, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, धर्मनिरपेक्ष कानून, जिनकी जड़ें हम अक्सर यूरोप में ढूंढते हैं,
वो शायद मंगोलिया के मैदानों में पनपी थी, एक खानाबदोश समाज से।
हाँ, ये इतिहास को देखने का मेरा नजरिया ही बदल देता है।
और मेरे लिए सबसे गहरा विचार ये है कि इतिहास आखिर है क्या, ये कहानी है, और कहानी कौन सुना रहा है इससे बहुत फर्क पड़ता है। वेदरफोर्ड ने मंगोलों की कहानी को उनके नजरिए से दोबारा कहने की कोशिश की है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या और भी ऐसे इतिहास हैं जिन्हें हारने वालों या बर्बर कहे गए लोगों के नजरिए से दोबारा सुनने की जरूरत है। और ये जानना कि वैश्वीकरण की जड़ें इतनी पुरानी और कह सकते हैं अप्रत्याशित हैं, ये आज दुनिया को देखने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है, एक सोचने वाली बात है, है ना?
बिल्कुल, एक गहरा सवाल छोड़ दिया है आपने। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।